eccetera, sempre. Gauranga Tumimore Dayana Chari Gauranga Tumimore Dayana Chari Apana Koriya Ranga Charane Rakhi Sagate Yagilo Shitala Charana Paya Charana Loi Ei kule kule moi dilo tilanjale kule kule moi dilo tilanjale rakhi ho charane more apna bole Vasudeva Ghosha Bale Charane Dhariya Kare rakho more pada chaya diya Kripa kare rakho more pada chaya diya Gauranita 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 jaya Gauranita Jaya Vishnu Thakur, Jaya Vishnu Thakur, Vishnu Thakur, Jaya Vishnu Thakur. Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada. Thank you.
कामना कर, मुझे आप अपने कृपा से वंचित न करें, मुझे अपना बनाकर अपने श्री चरणों में स्थान प्रदान कीजिए। आपके श्री चरण प्राप्ति हेतु मैंने सर्वस्व का त्याग कर दिया है, अब मैंने आपके शीतल चरणों का पूर्ण रूप से आश्रय लिया है। मैंने इस कुल और उस कुल को पूर्ण रूपेण त्याग दिया है, अब आप कृपा करके मुझे अपना कहकर अपने श्री चरणों में रखिए। श्री वासुदेव घोष कहते हैं, हे गौरांग, मैं आपके चरणों को धारण करके प्रार्थना करता हूँ कि कृपा करके मुझे अपने चरणों की छाया में ही रखिए। श्री वासुदेव घोष ठाकुर की, उनके बारे में ज्यादा तो मैं ढूंढ नहीं पाया, रिसर्च नहीं कर पाया, और खासकर मेरे को काफी लेट बताया था इनके सर्व के दामोदर प्रभु ने, तो मैं समाधि पुस्तक से उनके चरित्र के बारे में पढ़ते हैं। वासुदेव घोष और उनके दो भाई थे, माधव घोष और गोविंद घोष, और ये श्री चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु के शाश्वत संगी हैं। और वैसे जो वासुदेव घोष हैं, ये राधा माधव की नित्य लीला में गुणतुंग सखी हैं, और 64 महंत जब हम बोलते हैं तो उसमें वासुदेव घोष प्रथम 8 महंत में से एक है, और वो 8 महंतों को वास्तविकता में 8 अष्ट सखियों का विस्तार बताया जाता है। तो वासुदेव घोष एक बहुत ही महत्वपूर्ण संगीत है श्री चैतन्य महाप्रभु के। इनके भाई गोविंद घोष के जब त्योहार आएगा तो उस दिन आप सुनेंगे कि कैसे गोपीनाथ जी के विग्रह स्वयं इनका श्राद्ध करते थे। तो एनीवे, इन्होंने बहुत सुंदर भजन लिखे, आज सुबह भी एक भजन का अर्थ पढ़ा था, जय जय जगन्नाथ चिरानंदन, और एक यदि गौर न हो तो तबे की हो तो केमो ने धरी ताम दे। और ये जो तीनों भाई थे, मुख्यतः श्री चैतन्य चरितामृत में इनका वर्णन आता है कि ये तीनों बहुत ही सुंदर कीर्तनिया थे, गायक थे, और खासकर कि रथ यात्रा के दौरान ये एक पार्टी में गाते थे, और श्री वक्रेश्वर पंडित उस पार्टी के मुख्य नर्तक हुआ करते थे। तो हर साल ये आते थे जगन्नाथपुरी के अंदर, और एक में कीर्तन पार्टी के लीडर थे। और वासुदेव घोष जो है वो कीर्तन के द्वारा और जो पूरे बंगाल में प्रचार करते थे, और उन्होंने जो है बहुत सारे बंगाली भजन भी लिखे चैतन्य महाप्रभु के बारे में, जो भजन भक्त गाते हैं। तो वो दो भजन, एक भजन हमने अभी गाया जिसका अर्थ पढ़ा, एक सुबह भजन पढ़ा था, तीसरा जो है यदि गौर न हो तो तबे की हो तो के मने धरी ताम दे, कि यदि श्रीमान चैतन्य महाप्रभु इस कलयुग में अवतार नहीं लेते तो राधा रानी की महिमा के बारे में कौन बताता। यदि इसका अर्थ इस प्रकार से है, क्योंकि यहां लिखा मैं हिंदी पढ़ रहा हूं, हम कह यदि भगवान गौर इस कलयुग में युगावतार के रूप में प्रकट न हुए होते तब हमारा क्या होता, हम अपने जीवन कैसे धारण करते, इस ब्रह्मांड में श्रीमती राधा रानी की महिमा गान एवं कीर्ति से निमित्र प्रेम पूर्ण रसों की श्रेष्ठतम सीमाओं के विषय में कभी भी कौन जान पाता। प्रेम पूर्ण परम आनंदित भाव सहित भक्ति करने की शक्ति किसमें होती जो ब्रज की लीलाओं, ब्रज की बालाओं, गोपियों के पदचिन्ह का अनुसरण करती। वास्तव में तो वृंदा देवी के सर्वोच्च मधुर वन में प्रवेश करने के लिए ब्रज की गोपियों की चातुर्यपूर्ण कुशलता अत्यंत आवश्यक है। ओह कृपया भगवान गौरांग के महिमा पूर्ण व यशप्रद गुणों का बार बार गान कीजिए। अपने हृदय को निष्कपट सरल बनाकर रखने का प्रयास कीजिए। इस अज्ञानता रूपी सागर में किसी एक व्यक्ति ने भी उनके समान अत्यंत उदार महापुरुष कभी नहीं देखे हैं। यदि मैं भगवान गौरांग के पवित्र नाम का उच्चारण करता हूँ फिर भी मैं प्रेमानंद भाव विकसित नहीं कर पाया। अभी तक कैसे मैंने शरीर के बोझ का पालन किया है। सृष्टिकर्ता ने वासुदेव घोष के हृदय के स्थान पर एक पत्थर रखकर इस शरीर को आकृति प्रदान करके तैयार किया है। तो इस प्रकार से बड़ा नम्रतापूर्वक उनका भजन है, और जो है उनकी समाधि 64 समाधि एरिया में। जय श्री वासुदेव घोष प्रभु की, श्री वासुदेव घोष विभावती महोत्सव की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नारायणं नमस्कृत्या, नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवद्गीतम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी कृष्णाय वासुदेवाय नन्दनाय च नन्दगोपालकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः श्रीमद्भागवतम स्कंद 8 अध्याय 12 मोहिनी मूर्ति अवतार पर शिव जी का मोहित होना श्लोक संख्या 17 से 21 17 से 20 तक का अनुवाद तात्पर्य नहीं है तो पहले वो चार श्लोक का अनुवाद पढ़ रहा हूँ और उसके बाद 21वें श्लोक का अनुवाद तात्पर्य तो अभी इससे पहले आपने सुना हुआ आपको कल गोवर्धन पूजा था उससे पहले दीपावली दामोदर लीला का वर्णन हुआ लेकिन उससे पहले आप सबने सुना होगा कि भगवान शिव जी को कह रहे हैं कि ठीक है मैं आपको अपना मोहिनी मूर्ति रूप दिखाऊंगा तो कामी पुरुषों द्वारा अत्यधिक सराहा जाता है क्योंकि तुम मेरा वैसा रूप देखना चाहते हो तभी मैं तुम्हारे समक्ष उस रूप में प्रकट होऊंगा भगवान कह रहे हैं कि ठीक है प्रकट होऊंगा कुछ हो जाए तो बाद में मेरे को दोष मत देना जो है आपकी अपनी जिम्मेदारी जो है वो लीजिए तो अब सुखदेव गोस्वामी आगे कहना शुरू कर रहे हैं अब सीन बदल गया है वहां पे भगवान विष्णु और शिव जी का जो डायलॉग है वो समाप्त हो गया है और भगवान अपनी लीला प्रदर्शित करने वाले हैं और सर्व के दामोदर प्रभु ने बोला देने के लिए मैंने बोला ये अध्याय खत्म होने के बाद में आप भागवतम क्लास देने को बोलना जो ये बहुत ही ऑफकोर्स दिलचस्प भी लेकिन बहुत कठिन जो है शीर्षक है बोलना लेकिन लेकिन ये जो अभी 21वां श्लोक आएगा इसमें छोटा सा तात्पर्य है लेकिन मैंने फिर जो है प्रयास किया कुछ रिसर्च करने के ऊपर और शिव जी के कुछ महान गुणों के ऊपर शिव तत्व के ऊपर नहीं लेकिन शिव जी के कुछ महान गुण जो शायद अभी तक इन्हीं वक्ताओं ने उस प्रकार से प्रस्तुत नहीं किए मैं करने का प्रयास करूंगा तीन मुख्य पॉइंट है हालांकि तात्पर्य के अंदर बट वेल हाईलाइट ऑन लॉर्ड शिवास वेरी डीपली एग्जॉल्टेड क्वालिटीज तो सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा ऐसा कहकर भगवान विष्णु तुरंत ही अंतर ध्यान हो गए और शिव जी उमा सहित वहीं पर चारों ओर आंखें घुमाते उन्हें ढूंढते रह गए तो भगवान अंतर ध्यान हो गए वो चारों दिशाओं में देख रहे थे भगवान कहां गए तत्पश्चात शिव जी ने लाल गुलाबी पत्तियों तथा विविध प्रकार के फूलों से भरे निकट के एक रमणीक जंगल में एक सुंदर स्त्री को गेंद से खेलते देखा उसके कूल्हे एक चमचमाती साड़ी से ढके थे तथा करधनी से सुशोभित थे चूंकि गेंद ऊपर तथा नीचे उछल रही थी अतएव जब उससे खेलती तो उसके स्तन हिलते थे और जब वह अपने मूंगों जैसे लाल मुलायम पांवों से जल चलती तो स्तनों के भारी बोझ से तथा फूलों की भारी माला से उसकी कमर प्रत्येक पग पर टूटती हुई प्रतीत हो रही थी उस स्त्री का मुखमंडल चौड़ा था सुंदर था और चंचल आंखों के से सुशोभित था और वे आंखें उसके हाथों द्वारा उछाली गई गेंद के साथ इधर उधर घूम रही थी उसके कानों के दो चकमगाते कुंडल उसके चमकते गालों पर सामली छाया की तरह सुशोभित हो रहे थे और उसके मुख पर बिखरे बाल उसे देखने में और भी सुंदर बना रहे थे आज का श्लोक श्लथदुकुलं कबरिं च विच्युतां सन्यातीं वामकरेण वल्गुना सन्नह्यातीं वामकरेण वल्गुना विनिघ्नति मन्यकरेण कन्दुकम् विनिघ्नति अन्यकरेण कन्दुकम् विमोहयन्तीं जगदात्ममायया श्लथदुकुलं कबरिं च विच्युतां सन्नह्यतीं वामकरेण वल्गुना विनिघ्नतिं अन्यकरेण कन्दुकम् विमोहयन्तीं जगदात्ममायया लतद्दुकूलं कबरिंच विच्युतां सन्निहातिं वामकरेण बल्गुना विनिघ्नतिं अन्यकरेण कन्दुकम् विमोहयन्तिं जगतात्ममायया। तो एक प्रभु जी और एक माता जी श्लोक का उच्चारण कर सकते हैं। शब्दार्थ धन्यवाद की लथत नीचे गिरती या ढीली ढाली, दुकूलम साड़ी, कबरींच तथा सिर के बाल, विच्युतान खुलकर बिखरते हुए, सन्नेहतीम बांधने का प्रयत्न करती, वाम करेणा बाएं हाथ से, बलगुना अत्यंत आकर्षक, विधिघ्नतीम प्रहार करती, अन्य करेणा दाएं हाथ से, कंदुकम गेंद को, विमोहयंतीम इस प्रकार हरेक को सम्मोहित करती, जगत सारा संसार, आत्ममायया अपनी अंतरंगा शक्ति से। अनुवाद, जब वह गेंद खेलती तो उसके शरीर को ढके रखने वाली साड़ी ढीली पड़ जाती और उसके बाल बिखर जाते। वह अपने सुंदर बाएं हाथ से अपने बालों को बांधने का प्रयास करती और साथ ही दाएं हाथ से गेंद को मारकर खेलती जा रही थी। यह इतना आकर्षक दृश्य था कि भगवान ने अपनी अंतरंगा शक्ति से इस तरह हरेक को मोह लिया। तात्पर्य, भगवत गीता 7:14 में कहा गया है, दैवी ही एषा गुणमयी मम माया दुरत्यया। भगवान की बहिरंगा शक्ति अत्यंत प्रबल है, निसंदेह उसके कार्यों से प्रत्येक व्यक्ति पूरी तरह मोहित हो जाता है। यद्यपि शंभु अर्थात भगवान शिव को इस बहिरंगा शक्ति से सम्मोहित नहीं होना चाहिए था, किंतु भगवान विष्णु उन्हें भी मोहित करना चाह रहे थे, अतएव उन्होंने अपनी अंतरंगा शक्ति को उसी तरह से कार्य करने दिया जिस तरह से उनकी बहिरंगा शक्ति सामान्य व्यक्तियों को मोहित करने के लिए करती है। भगवान विष्णु किसी भी व्यक्ति को, यहाँ तक कि शंभु जैसे प्रबल पुरुष को भी मोह सकते हैं। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जना शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परियन सहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणलभिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम के अंदर प्रथम स्कंद से लेके अंतिम स्कंद तक भगवान कृष्ण तो वर्णित है ही हैं, लेकिन कुछ 3-4 चरित्र हर स्कंद में पाए जाएंगे। एक है भगवान इंद्र, जिनके हमने कल गोवर्धन पूजा और अभी तो सात इंद्रमान उठाएंगे, उसके बाद में इंद्रशाम मांगने आएंगे भगवान से इत्यादि। दूसरे भगवान शंकर, शिव भगवान शंभु, ये भी श्री भागवतम के अंदर, एक है नारद मुनि, लगभग लगभग प्रत्येक स्कंद के अंदर वो बहुत ही महत्वपूर्ण लीला करते हुए हम उनके बारे में पढ़ते हैं हर स्कंद के अंदर। और ये श्लोक के तात्पर्य में भी, और ये लीला भी बहुत विचित्र है, भगवान के श्री रूप धारण करके, जो है भगवान मोहिनी मूर्ति का रूप धारण करके शिव जी को आकर्षित करने के लिए, मोहित करने के लिए। ऑफकोर्स पर्पस तो शिव जी को मोहित करना ही था, पर्पस था सभी दानवों को मोहित करके और देवताओं को अमृत पिलाने के लिए, लेकिन भगवान ऐसा चीटिंग करके सभी दानवों को अमृत पिलाने से वंचित रख दिया उन्होंने, और बाद में आज शिव जी को मोहित करेंगे भगवान। तो ये श्लोक तात्पर्य प्रवर तीन पॉइंट लिख रहे हैं कि भगवान की बहिरंगा शक्ति इतनी प्रबल है, हर किसी को मोहित करती रहती है। दुनिया के अंदर जो है हर व्यक्ति भगवान के इस बहिरंगा शक्ति के तीनों गुणों से अच्छी तरीके से आच्छादित है, पूरी तरीके से मोहित है। और दूसरा पॉइंट जो प्रभुपाद जी लिख रहे हैं यहाँ पे कि भगवान शिव को मोहित नहीं होना चाहिए था, लेकिन फिर भी भगवान शिव मोहित हो गए जो है। और तीसरा कि जिस शक्ति से मोहित थे वह बहिरंगा शक्ति नहीं थी, वह अंतरंगा शक्ति थी। तो भगवान शिव है कौन? जब हम अचिंत्य भेदाभेद तत्व की बात करते हैं तो ये तीन चार प्रसंग में तो वो हमेशा लागू होता है। एक है जीव तत्व, जीव कहां से आए, इसके बारे में एक अचिंत्य भेदाभेद रहता है। दूसरा शक्ति तत्व, भगवान की अंतरंगा बहिरंगा शक्तियों के बारे में भी शक्ति शक्तिमान जो है दोनों अलग हैं, एक भी है, इसको लेकर भी कई बार डिफिकल्ट रहता है। एक गुरु तत्व, इसको समझना भी बहुत मुश्किल है, इनकंसीवेबल है, अचिंत्य है कि गुरु तत्व किस प्रकार से कार्य करता है। और ऐसे शिव तत्व, भगवान शंकर को समझना भी अचिंत्य है, ये बोलते अचिंत्य भेदाभेद, ऐसे अचिंत्य मतलब इनकंसीवेबल, अर्थात इनको भौतिक दृष्टि से, भौतिक बुद्धि से, भौतिक दृष्टि से समझना या समझ पाना बहुत ही कठिन है। हाँ, थियोरेटिकली नहीं समझ सकते, लेकिन भक्ति की शक्ति से जैसे भक्त शुद्ध होते हैं तो उस भक्ति की शक्ति से धीरे धीरे तत्वों को समझ सकता है। हम लास्ट ईयर नरसिंह कवच प्रभु हमको डीटी वर्षों का जब कोर्स कराने के लिए आए थे तो वो कह रहे थे जिस प्रकार ये सब तत्व अचिंत्य है, वैसे एक तत्व और भी अचिंत्य है, वो है आरती का तत्व। आरती को समझना, जब भगवान की जो पुजारी लोग आरती करते हैं तो उसमें भी कह रहे कम से कम 10 एक्सप्लेनेशन में जानता हूं, 10 अलग अलग आरती के एक्सप्लेनेशन, लेकिन और सारे सही हैं और सारे फिर भी अचिंत्य हैं, क्योंकि एक एक्सप्लेनेशन दूसरे से कभी मैच नहीं खाता। तो इसीलिए बोल रहे थे कि जिस भावना से आपके मंदिर में जिस भी तत्व से हो रही है उसी भावना से आप कीजिए। तो एनीवे, तो ये शिव जी कौन है वास्तविकता के अंदर? तो शिव जी वास्तविकता में, शिव और भगवान विष्णु में कुछ भेद नहीं है, दोनों एक ही हैं। प्रभुपाद जी श्री चैतन्य चरितामृत के आदि लीला के अंदर छठे अध्याय के 79th वर्स के अंदर बड़ा रोचक परपोट देते हैं वहां पे, अनंत ब्रह्मणि रुद्र सदा शिवेर अंश गुणावतार ते हो सर्व देव अवतंस। शिवजी तीन पॉइंट में चर्चा करूंगा शिवजी के बारे में। शिवजी योगेश्वर हैं, जिस प्रकार हम कृष्ण के बारे में बोलते हैं यत्र योगेश्वर कृष्ण, उसी प्रकार शिवजी भी योगेश्वर हैं। और शिवजी जो है वैष्णवानां यथा शंभु, टॉप मोस्ट वैष्णव है शिवजी, और जो है तीसरा जो है शिवजी और भगवान विष्णु या कृष्ण के बीच में कुछ संबंध, थोड़ा बहुत तत्व है इसके अंदर और लेकिन कितने अंतरंग है उसको समझने का। तीसरे पॉइंट को सबसे पहले कवर कर रहा हूं, जय श्री राधिका भगवान की, जय श्री राधिका बल्ले सुभद्रा महारानी की, जय श्री कृष्ण बलराम की, जय। तो ये तात्पर्य के अंदर बड़ा अच्छा प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, पूरा तात्पर्य नहीं, बीच में कुछ कुछ पार्ट पढ़ रहा हूं। रुद्र या शिव जी के 11 विस्तार है जो इस प्रकार है, जिनको हम एकादश रुद्र बोलते हैं, अजय के पात अहि प्रद्न विरूपाक्ष रैवत हर बहुरूप देव श्रेष्ठ त्रयंबक सावित्र जयंत पिनाकी तथा अपराजित। इसके अतिरिक्त रुद्र के 8 रूप हैं जो पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश सूर्य चंद्रमा तथा सोमयाजी कहे जाते हैं। सामान्यतया इन रुद्रों के पांच मुख, तीन नेत्र, दस भुजाएं होती हैं। कभी कभी रुद्र की तुलना ब्रह्मा से की जाती है और वे जीव माने जाते हैं, किंतु जब रुद्र की व्याख्या पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अंश विस्तार के रूप में की जाती है तब उनकी तुलना शेष से की जाती है। अपराभा जी बता रहे हैं कि शिव जी हैं वो विष्णु भी हैं और जीव भी हैं, इसलिए अचिंत्य जो है जब उनकी तुलना, इसीलिए शिव जी एक साथ भगवान विष्णु के विस्तार तथा सृष्टि का संहार करने में सक्षम होने के कारण जीव माने जाते हैं। भगवान विष्णु के अंश रूप में वे हर कहलाते हैं। हरि हर जिस प्रकार से है, तो भगवान शिव का एक नाम है हर, तो जिस हरि और हर के, हरि के विस्तार है हर, और भौतिक गुणों से अतीत होते हैं, तीनों गुणों से वो परे होते हैं, किंतु तमोगुण के संपर्क में आने पर प्रकृति के भौतिक गुणों द्वारा कलुषित प्रतीत होते हैं। इसकी व्याख्या श्रीमद् भागवत तथा ब्रह्म संहिता में की गई है। शीरम में सदधि विकार विशेष योगा समझायते नहीं तथा पृथगस्ति हेतु यह शंभुता अभी तथा समुपैति कार्या गोविंद माद पुरुषम तमहम भजामि। श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद में कहा गया है कि जब प्रकृति जड़ अव्यक्त अवस्था में रहती है तब उसे रुद्र का सानिध्य होता है, किंतु जब प्रकृति के गुण शुद्ध हो उठते हैं भगवान की ग्लांस से तो वे दूर से प्रकृति के साथ रहते हैं। तथा दही से दी ब्रह्म संहिता विष्णु तथा शिव जी के बीच संबंध है, उसकी उपमा दूध दही से दी गई है। दूध में कुछ पदार्थ मिलाकर दही बनाया जाता है, दूध तथा दही में समान पदार्थ होने पर भी उनके कार्य भिन्न भिन्न है। उसी प्रकार शिव जी भगवान विष्णु के अंश हैं, फिर भी जगत के संहार में भाग लेने के कारण वे उसी तरह बदले गए माने जाते हैं जिस प्रकार दूध दही में बदल जाता है। पुराणों में शिव जी को कभी ब्रह्मा के सिर से तो कभी विष्णु के सिर से प्रकट होते दिखाया जाता है। संहार करता रुद्र का जन्म संकर्षण से होता है जो सारी सृष्टि को जला सकते हैं। वायु पुराण में यह बहुत महत्वपूर्ण चीज है, वायु पुराण में वर्णन मिलता है कि सदाशिव एक वैकुंठ लोक में रहते हैं। वे सदाशिव भगवान कृष्ण के लीलावतार के प्रत्यक्ष विस्तार होते हैं, अर्थात जो सदाशिव हैं वो वैकुंठ के अंदर रहते हैं और भगवान कृष्ण के लीलावतार के ही इज अ पर्सनल एक्सपेंशन जो है ऑफ द टू इज अ एक्सपेंशन ऑफ द लॉर्ड टू टेक पार्ट इन हिज प्लेजर पास टाइम्स, कि भगवान के लीलाओं में अवतार लेने के लिए सदाशिव का विस्तार होता है। ये सदाशिव भगवान कृष्ण के लीला अवतार के प्रत्यक्ष विस्तार होते हैं। कहा जाता है कि सदाशिव अर्थात शंभु इन्हीं वैकुंठ लोकों के सदाशिव के भगवान विष्णु के अंश हैं और उनकी प्रेयसी महामाया लक्ष्मी या रमा देवी के अंश हैं। महामाया भौतिक प्रकृति का उद्गम या जन्म स्थान है। तो शिवजी भगवान विष्णु के अंश हैं और जो पार्वती हैं देवी दुर्गा हैं वो रमा देवी के विस्तार हैं, और जो सदाशिव वैकुंठ लोक में रहते हैं वो इस भौतिक जगत के जो शंकर हैं या शिव जी हैं उनसे वो उनके विस्तार हैं, मतलब सदाशिव के विस्तार हैं। लेकिन जो शिव जी सदाशिव हैं जो वैकुंठ लोक के अंदर है वो शाश्वत रूप से वहां निवास करते हैं और भगवान के लीला अवतार में आनंद वर्धन के लिए उनका विस्तार होता है। और दोनों में कुछ ज्यादा भेद नहीं है शिव जी और भगवान के अंदर, जिस प्रकार दूध और दही में अंतर नहीं है, सब जानते हैं इस उदाहरण को, कोई ज्यादा दूध दही में अंतर नहीं है। लेकिन क्योंकि भगवान शिव जो है प्रकृति के संपर्क में आते हैं इसीलिए जो है वो भगवान विष्णु से अभिन्न है। लेकिन क्यों शिव जी विष्णु तत्व के कैटेगरी में आते हैं, तो इस भक्ति भागवत महाराज एक बता रहे थे कि ये जो ईशोपनिषद में श्लोक आता है शुद्धम अपाप विद्धम, तो विष्णु तत्व जो होते हैं उनकी ये एक पोटेंसी होती है अपाप विद्धम। जिस प्रकार से सूर्य किसी बहुत ही कंटेमिनेटेड स्थान पर भी जा करके, अर्थात लोग खुले में मलमूत्र त्याग करते हैं और सूर्य उनको सुखा देता है या कहें तो उनको चूस लेता है, लेकिन सूर्य कभी अपवित्र नहीं होता, सूर्य हमेशा पवित्र रहता है चाहे वह उनके संपर्क में भी क्यों ना आए। उसी प्रकार से जो है जितने भी विष्णु तत्व हैं वो सभी अपाप विद्धम, उनके अंदर ये क्वालिटी होता है। उसी प्रकार भगवान शंकर के अंदर भी शिव जी के अंदर भी जो ये क्वालिटी है अपाप विद्धम की, कि वे माया के संपर्क में आते हैं लेकिन माया से प्रभावित नहीं होते, इसीलिए भगवान के बहिरंगा शक्ति से प्रभावित नहीं होते, अंतरंगा शक्ति से ही प्रभावित होते हैं। और दूसरा शिवजी का जो एक गुण हम चर्चा कर रहे थे, और तो एक एक क्वालिटी है शिवजी और उसके अंदर, और इसमें पढ़ मैं दोबारा आऊंगा कि शिवजी हालांकि भौतिक प्रकृति के संपर्क में रहते हैं और उनके संगीगण कौन है अगर देखा जाए तो सारे रजोगुणी तमोगुणी लोग, भूत पिशाच कदम और प्रेत, गले में सांप डालते हैं इत्यादि, लेकिन शिवजी कभी भी उनके संपर्क से प्रभावित नहीं होते। शिवजी हमेशा अपनी ट्रांसेंडेंटल पोजीशन अपनी बनाए रखते हैं हमेशा, चाहे वो महामाया के संपर्क में भी क्यों ना हो, स्वयं दुर्गा देवी के संपर्क में, उनके तो स्वामी हैं। और जो है, और चाहे उनके ऐसे जो है तमोगुनी संगी क्यों ना हो, इस प्रकार से भूत प्रेत निशाचर इत्यादि, चाहे अपने शरीर पे भस्म लगाते हैं वो इन सबको। इसके बाद में शिवजी योगेश्वर भी हैं। योगेश्वर अर्थात संपूर्ण योग शक्तियां उनके अंदर, सम टोटल ऑफ ऑल मिस्टिसिज्म, उनके पास असीमित शक्तियां हैं प्रैक्टिकली। लाइक दैट, जिस प्रकार भगवान के पास शक्ति है उसी प्रकार से लगभग उन्हीं के समान भगवान शिव के पास भी शक्ति है। वो त्रिकालज्ञ भी है, जानते हैं क्या होने वाला है, जिस प्रकार से चतुर्थ स्कंद के अंदर जब लीला आती है कि सती उनसे जिद करती है कि मेरे को अपने पिता के यज्ञ में जाना है, आप जाने दीजिए, तो बोले देखिए जाना है तो जाइए, लेकिन वहां तुम्हारा अपमान होगा, वो तुम्हारे प्राण से भी अधिक तुमको मतलब असहनशील होगा, वो सहन नहीं कर पाओगे जो तुम्हारा अपमान होगा। और वही होता है बाद में कि वो अपना शरीर त्याग देती है। तो त्रिकालज्ञ भी हैं, उनकी इतनी असीमित शक्ति है कि पूरे ब्रह्मांड को परेशान करने वाला जो हलाहल शिव हलाहल विष है वो विष को भी पान कर सकते हैं शिव जी, और उनको कुछ प्रभाव नहीं प्रभावित नहीं पड़ता। पूरा ब्रह्मांड उससे उत्तेजित था, उस विष से, उस पूरे हल को उन्होंने अपने गले में रख लिया, ऐसे जैसे एज इफ इट इज नथिंग, सिर्फ एक नीली रेखा उनके गले पे आई, अप्रभावित होना। वैसे और भी हम शिव जी के लीला को पढ़ सकते हैं, जैसे हम देखते हैं सातवें स्कंद के अंदर आई थिंक त्रिपुरासुर था, तो कैसे ब्रह्मा जी और शिव जी ने गाय बछड़ा बन करके और सारा उनका अमृत कुंड का पान कर लिया। तो ऐसे हम देखते हैं शिव जी के अंदर लगभग असीमित शक्तियां हैं, वो योगेश्वर है, लेकिन वे शिव जी वैष्णवानाम यथाशंभु है। और ये क्वालिटी प्रभुपाद जी लगभग लगभग जहां जहां शिव जी का वर्णन आएगा वहां वहां प्रभुपाद इस क्वालिटी को हमेशा मेंशन करते हैं। शिव तत्व पे ज्यादा ना चर्चा करके श्रील प्रभुपाद वैष्णवानाम यथाशंभु, शिव जी के महान गुण वैष्णव गुण को हमेशा चर्चा करते हैं। तो व्हाट मेक्स लॉर्ड शिवा द टॉप मोस्ट वैष्णव, ऐसा क्या है शिव जी को जो उनको वैष्णव बनाता है? तो पहला एक लीला आप सबने सुनी होगी, सबसे सबने, एक ब्राह्मण था आज से 500 साल पहले करीब, और वो शिव जी की उपासना करता था। शिव जी प्रसन्न हो गए, उसके सामने आए, बोले वरदान मांगो, क्या चाहिए आपको? तो क्या मांगा उसने कि दुनिया में जो सबसे कीमती रत्न हो वो मुझे दीजिए, आप कीमती वस्तु हो। शिव जी ने क्या बोला, कहां जाओ आप, ब्रज में जाओ और सनातन गोस्वामी नाम के एक संत है उनके पास आप जाओ, उनके पास होगा। और ये ब्राह्मण भी चला गया और सनातन गोस्वामी के पास आया, बोला कि देखो ऐसे भगवान शिव ने भेजा है कि आपके पास सबसे कीमती मूल्यवान वस्तु है इस संसार के अंदर, आप कृपा करके दे दीजिए। तो बोले ठीक है, वहां कूड़ेदान के पास में टचस्टोन पारसमणि रखा है, आप उठा लीजिए। तो उसने उठा लिया, जिसको टच किया सोना बन रहा था, तो बड़ा ब्राह्मण तो खुश हो गया। लेकिन आधे रास्ते में जानकर उसको लगा कि सनातन गोस्वामी ने चीटिंग किया है, बोले इतना कीमती वस्तु होता तो कीमती वस्तु को तो कोई तिजोरी के अंदर सेफ के अंदर बैंक के अंदर संभाल के रखता है, थोड़े ना कोई कूड़ेदान में रखता है, कूड़ेदान में तो जो गंदगी होती है उसको रखते हैं। तो सनातन गोस्वामी ने चीटिंग किया है। तो वापिस आया तो सनातन गोस्वामी ने बोला अच्छा सबसे कीमती वस्तु चाहिए तो आप क्या करो, ये जो टस्ट होना है इसको फेंक के आ जाओ जमुना में या किधर तो भी। तो वो फेंक करके जब आ गए तो उनको क्या दिया, बोले हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो शिवजी सनातन गोस्वामी ने उसको हरे कृष्ण महामंत्र में दीक्षा दिया। अब शिवजी को तो पता था सनातन गोस्वामी ये हरे कृष्ण महामंत्र देने वाले हैं, नहीं पता होता तो उनके पास भेजा नहीं होता। और ऐसा नहीं है कि शिवजी स्वयं ये हरे कृष्ण महामंत्र में शिक्षा और दीक्षा इस ब्राह्मण को नहीं दे सकते थे, ऐसा तो है नहीं कि शिव जी को पता नहीं था या उनके अंदर क्वालिफिक, वो तो जगत गुरु हैं, सब जगह यही बना था अखिल जगत गुरु और अखिल गुरु इस प्रकार से। शिव जी का तो इतना, जब आप पढ़ेंगे उनके क्वालिटी चतुर्थ स्कंद के अंदर, अष्टम स्कंद के अंदर, सब जगह तो ये वर्ड कॉमन है, शिव जी सबके गुरु हैं। और इसीलिए अद्वैत आचार्य के रूप में भी आते हैं कि शिव जी के समान ही प्रचार करते थे। अद्वैत बोला जाता था क्योंकि वह भगवान विष्णु से अभिन्न है, और आचार्य बोला जाता क्योंकि भगवान शंकर की तरह प्रचार करते हैं, इसलिए अद्वैत आचार्य जो है महाविष्णु सदाशिव के कंबाइंड अवतार हैं। तो शिव जी सबके पूरे ब्रह्मांड के गुरु हैं, तो वो भी तो इस ब्राह्मण को हरे कृष्ण महामंत्र दीक्षा दे सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया? दिस इज शिवजी क्वालिटी ऑफ ह्यूमिलिटी, नम्रता, कि वे जो है गुरु शुड नॉट बी एंशियस टू एक्सेप्ट डिसाइपल्स। क्योंकि कई बार हम सबके अंदर जब हम प्रचारक बनते हैं, गुरु बनते हैं, तो ये होता है कि कितने शिष्य हुए, कितने लोग मेरे क्लास को सुनने के लिए आएंगे इत्यादि। बट शिव जी उनको दूसरे गुरुओं के पास भेज रहे हैं, सनातन गोस्वामी के पास भेज रहे हैं कि नहीं आप इनके पास जाइए, ये शिव जी की नम्रता है। दूसरी नम्रता बृहद भागवतामृत में पता लगती है, जब शिव जी के पास आते हैं वो गोप कुमार बोलते हैं आप महान वैष्णव हैं, गोप कुमार नहीं वो बोलते हैं महान वैष्णव, तो बोलते नहीं आप इस मेरे से महान वैष्णव कौन है? प्रहलाद महाराज। देखो नरसिंह भगवान को शांत करने के लिए मैं भी गया था, वहां लाइन में लगा था, ब्रह्मा जी का मैंने प्रार्थना किया था लेकिन भगवान शांत नहीं हुए थे, लेकिन वो प्रहलाद इतने प्रिय हैं भगवान को कि भगवान शांत हो गए, तो उनके पास जाओ आप। तो अन्य भक्तों का हमेशा गुणगान करने में शिव जी जो है रेडी रहते हैं हमेशा। तो ये शिव जी को जो है उनकी नम्रता उनको वैष्णव बनाती है मुख्यतः, तो ये क्वालिटी है। दूसरा इसी प्रसंग के अंदर एक चीज और सीखने को मिलता है, शिव जी का एक नाम क्या है? आशुतोष। आशुतोष मतलब, आशु मतलब जल्दी, तोष अर्थात जो तुष्ट हो जाते हैं, तो जब बहुत ही जल्दी संतुष्ट हो जाते हैं उनको बोला जाता है आशुतोष। और बड़ी आसानी शिव जी को प्रसन्न करना बहुत आसान है इनफैक्ट। और शिव जी का एक नाम है रुद्र, बड़ी जल्दी गुस्सा भी हो जाते हैं, लेकिन नॉर्मली शिव जी बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। और ये क्वालिटी को ब्रह्मा जी जब सती आत्महत्या कर लेती है दक्ष के यज्ञ के अंदर, तो शिव जी बहुत स्तुतित होते हैं और शिव जी के अपने सारे गणों को भेजते हैं वहां पे, और वो दक्ष प्रजापति का वध भी कर देते हैं, पूरा का पूरा यज्ञ को विध्वंस मचा देते हैं वहां पे, दक्ष प्रजापति का सिर काट देते हैं, और एक ऋषि कोई जो दक्ष के साथी थे उनका दांत तोड़ देते हैं, वो हंस रहे थे उस समय, और एक आई थिंक भृगु मुनि का किसी का तो मूंछ निकाल देते हैं, इतना अत्याचार करते हैं वहां पे, और दक्ष प्रजापति का सिर उठा काट करके और यज्ञशाला के अंदर डाल देते हैं। इतना शिवजी बहुत क्रोधित होते हैं। तो ब्रह्मा जी फिर सब भक्तों को सभी देवताओं को सब डरे होते हैं क्या करें, बोले अभी आप जाओ शिव जी के पास प्रार्थना करो, उनका नाम आशुतोष है, बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं जो है, तो वो उनकी चिंता मत करो, वो संतुष्ट हैं। और सब देवतागण जाते हैं उनके पास में और प्रार्थना करते हैं, सब लोग जाते हैं प्रार्थना, सब ब्राह्मण इत्यादि जाते हैं प्रार्थना करते हैं। तो ये शिव जी बहुत जल्दी आशुतोष है, इसलिए देखते हैं सब जो दानव लोग हैं जो असुर लोग हैं वो शिव जी की उपासना करते हैं। और हम जानते हैं शिव जी भी कई बार थोड़ा जो अलग अलग प्रकार के वरदान देते हैं, जैसे भस्मासुर या वृकासुर था उसको बोल दिया कि जिसके सर पे हाथ रखो तुम्हारा सर फट, उसका सर फट जाएगा, वो बाद में शिव जी के पीछे ही भागा, फिर शिव जी ने वरदान दे दिया इसको रावण को, रावण तो शिव जी का भक्त था। ऐसे हम कुछ कुछ जगह देखते हैं कि जहां डीमंस की बात आती है तो शिव जी ऐसे ही आराम से वरदान दे देते हैं, साधारण लोग शिव जी की पूजा करते हैं शिव जी थोड़ा वरदान दे देते हैं, लेकिन जहां भक्तों को वरदान देना होता है ना, शिव जी बहुत सतर्क होते हैं भक्तों से डीलिंग के अंदर, वहां ऐसा वरदान नहीं देते। जिस प्रकार भगवान कृष्ण वरदान नहीं देते अपने भक्तों को कि उनका भौतिक संपत्ति आज फंस जाए, ऐसे शिव जी भी जो है भगवान विष्णु के भक्तों से डीलिंग करते बहुत सतर्क होते हैं। ये ब्राह्मण को चाहते तो थोड़ा पारस पत्थर वगैरह कुछ दे देते, संपत्ति दे देते, लेकिन दिए नहीं, बोले भगवान विष्णु का भक्त है, कृष्ण का भक्त है, ये इसको टॉप मोस्ट गिफ्ट मिलना चाहिए, हरे कृष्ण महामंत्र, कृष्ण का प्रेम मिलना चाहिए। तो ऐसे शिव जी बहुत ही सतर्क थे भक्तों के साथ डीलिंग के अंदर, भगवान कृष्ण के भक्तों के साथ। ऐसे ही चतुर्थ स्कंद के अंदर शिव जी वहां गुरु का रोल निभा रहे हैं, तो वहां पे रुद्र गीत प्रचेताओं को शिक्षा दे रहे हैं, बहुत ही सुंदर प्रार्थनाएं हैं, और ऐसा मंत्र बोल रहे हैं कि जो है सर्वश्रेष्ठ स्तुति है, सभी प्रचेताओं को बोलेंगे कि आप इसका जाप करना। लेकिन वहां पे शिव जी एक बड़े बहुत ही सुंदर प्रचेताओं को दर्शन देने के लिए आते हैं, तो बड़ा सुंदर बात बोलते हैं, और प्रभुपाद जी बड़ा सुंदर तात्पर्य लिखते हैं। बोल रहे हैं अथ भागवता यूयम प्रिया स्व भगवान यथा न मद भागवता नाम न प्रिया नन्योस्ति कदाचित। तुम सब भगवान के भक्त हो, दस भाई के प्रचेता बोले भगवान के भक्त हो, अतः तुम मेरे लिए श्री भगवान के समान पूज्य हो। जिस प्रकार मेरे भगवान पूज्य हैं, उसी प्रकार आप सब जो प्रचेता हो पूज्य हो। इस प्रकार मैं यह जानता हूं कि भक्त भी मेरा आदर करते हैं और मैं उन्हें प्रिय हूं। भक्तों को मेरे समान अन्य कोई प्रिय नहीं है। शिव जी कह रहे हैं कि तुम सब पूज्य हो और मैं जानता हूं मैं भी तुम लोगों को बहुत प्रिय हूं। वो भी कह रहे हैं, तो प्रभुपाद जी लिख रहे हैं इस तात्पर्य के अंदर कि बहुत सारे महत्वपूर्ण पॉइंट हैं। ये चौथे अध्याय का चौथे स्कंद का 24:24-30 वर्स है, आप चाहें तो बाद में पढ़ सकते हैं। बहुत ही सुंदर शिव जी का ग्लोरिफिकेशन है श्लोक के, इस तात्पर्य के अंदर, और पूरा वृंदावन से लेके सारा लीला बताया इसके अंदर शिव जी के बारे में। तो यहाँ शिव जी के प्रभु तात्पर्य के अंदर बता रहे हैं कि जो भगवान के भक्त हैं शिव जी को बहुत प्रिय हैं और शिव जी भगवान के भक्तों को बहुत प्रिय हैं। अर्थात जो भगवान के भक्त हैं, भगवान कृष्ण के भक्त हैं, वो भी शिव जी से बहुत प्रेम करते हैं, बहुत प्रिय हैं, उनकी उपासना करते हैं और उनसे आशीर्वाद चाहते हैं। खासकर क्या आशीर्वाद चाहते हैं मैं सबसे अंदर बताऊंगा, अब भूल जाऊं तो याद दिला दीजिएगा। और प्रभुपाद जी लिख रहे हैं यहां, ऐसा प्रतीत होता है कि शिव जी असुरों को औपचारिकतावश आशीर्वाद देते हैं, वास्तविकता भगवान के ही भक्त उनको प्यारे हैं। तो असुरों का जब आशीर्वाद देना होता है शिव देते हैं, बोले ले लो जो लेना ले लो, कोई बात नहीं, फॉर्मेलिटी, ठीक है। मतलब अर्थात शिव जी की भी कोई उपासना करता है तो शिव जी जस्ट फॉर्मेलिटी के लिए उसको आशीर्वाद दे देते हैं जो मांगते हैं, लेकिन असली आशीर्वाद किसके लिए जरूर रखते हैं? भगवान के भक्तों के लिए। जिस ट्रेजर को, जिस खजाने को, जिस अमृत को वो सारा दिन सारा रात 24 घंटे ये अपने हृदय में धारण करते हैं, वो अमृत कृष्ण प्रेम का जो अमृत है वो केवल भगवान कृष्ण के भक्तों के साथ ही शेयर करते हैं। एंड इट बिकम्स एक्सटैटिक, वेरी वेरी एक्सटैटिक। ठाकुर भक्ति विनोद भी गाते हैं, शिव शुक नारद प्रेम गद गद भक्ति विनोद देखे गोरा रसंपद। शिवजी सुखदेव गोस्वामी नारद मुनि प्रेम गद गद, यू नो कि ये सब प्रेम से भगवान गौरव श्री चैतन्य महाप्रभु की आरती कर रहे हैं जाह्नवी के तट पर, गंगा के तट पर। तो शिव जी भक्तों के साथ बहुत सतर्क रहते हैं, उनके साथ में उनको कृष्ण प्रेम का ही आशीर्वाद देते हैं। और जो है तीसरा, शिव जी योगेश्वर हैं, माया देवी जो पूरे जगत की संरचना करती है वो उनकी भार्या है। लेकिन प्रभुपाद जी कहानी बताते हैं और ये कहानी बताते हैं कि शिव जी एक आदर्श गृहस्थ हैं। आदर्श गृहस्थ क्यों हैं? उनके लिए कुछ असंभव नहीं है। जिनकी पत्नी ही भवानी हो तो फिर ना वो पूरे जगत का सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रह करने वाले उनके भार्या हैं। लेकिन उसके बाद भी शिव जी जो है उनके पास घर नहीं है, वो गृहस्थ आश्रम के अंदर घर में नहीं रहते हैं। और भवानी पार्वती भी जो है वो एकदम पतिव्रता स्त्री है, अपने पति की चेतना को ही फॉलो करती हैं कि ठीक है पति इतने सिंपल है, पेड़ के नीचे रहते हैं तो फिर मैं भी उन्हीं को फॉलो करती हूँ, चाहे पूरे ब्रह्मांड की रचना करने वाली हो। शिव जी इतने विनम्र है, इतने विरक्त हैं, है ना। अच्छा पता नहीं सत्य है कि नहीं है, लेकिन हम बचपन में सुनते थे, क्योंकि एक समय था जब मैं छोटा था तो मैं भी शिव जी की बहुत पूजा करता था और उनके बारे में जानने में रुचि रखता था। तो मुझे बताते थे बड़े लोग कि शिव जी का कभी मंदिर नहीं बनाते, ऊपर शेड डाल देंगे या पेड़ के नीचे रखेंगे ऐसे। अभी पता नहीं कितना सत्य है क्या है, क्योंकि बोलते शिव जी तो कैलाश पे रहते हैं, पेड़ के नीचे रहते हैं, और अगर आप उनके लिए कोई भवन बनाओगे तो वो भवन ज्यादा टिकता नहीं है ऐसा। हालांकि मैंने कहीं पढ़ा नहीं, लेकिन बचपन में तो सुनते थे कुछ। लेकिन कुल मिला के शिव जी की एक महान बात है कि वो विरक्त है ना। तो ऐसे प्रभुपाद जी एक स्टोरी बताते हैं शिव जी के बारे में, कह रहे कि एक बार जो है पार्वती देवी ने बोला कि देखो सब लोग उपासना करते हैं आपकी और अलग अलग वरदान आप उनको दे देते हो, कोई बोलता है घर बना दो, कोई बोलता है शादी करा दो, कोई धन दे दो, कोई बीमारी दूर कर दो, आप सबका घर बनाते हो और हमारे पास ही घर नहीं है, है ना। तो ऐसा नहीं कि हम भी अपने लिए घर बना लेते हैं। तो शिव जी ने बोला कि ठीक है चलो अभी तो सब कुछ बना सकते हैं, वो दोनों की दोनों इतने शक्ति है सक्षम है सब कुछ बनाने के लिए, लेकिन जो है उन्होंने ठीक है घर बना लेते हैं। अब साधारण घर तो होगा नहीं, सीमेंट रोड़ी रहते का लेंटर का, उन्होंने घर बनाया तो किसका था, बिल्कुल सॉलिड गोल्ड, सोने का घर बनाया एकदम, महल पूरा। और जब घर पूरा बना दिया सोने का, तो फिर गृह प्रवेश करना था, तो ब्राह्मणों को बुलाया, तो गर्ग आचार्य को, गर्ग मुनि को गृह प्रवेश के लिए बुलाया यज्ञ करने के लिए। तो जब गृह प्रवेश हो गया, पूरा संस्कार यज्ञ हो गया, तो शिवजी और पार्वती ने जो है पूरा फीस्ट बनाया और ब्राह्मणों को भोजन खिलाया। गृहस्थ आश्रम का पूरा धर्म फॉलो कर रहे हैं और सारे गर्ग मुनि जितने शिष्य आए थे यज्ञ करने के लिए, सबको प्रसाद खिलाया। और बाद में एक चीज वो भूल गए कि भाई ब्राह्मणों को प्रसाद खिलाने के बाद क्या देना पड़ता है, दक्षिणा। तो उनको तो ये तो इसकी व्यवस्था की नहीं, दक्षिणा की उन्होंने। तो वो आए ब्राह्मणों के पास, पार्वती जी ने बोला उनको कि हमें दक्षिणा देनी है। तो शिव जी ने पार्वती को और जो है सब ब्राह्मणों को बोला, देखो और तो हमारे पास कुछ है नहीं, यही एकमात्र घर है, तो आप इसी को दक्षिणा में ले लीजिए। तो शिव जी ने वही घर पूरा जो है दक्षिणा में दे दिया और स्वयं फिर शिव जी और पार्वती जो है पेड़ के नीचे आ गए वापस, है ना। तो शिव जी ने बोला कि ऐसा लगता है हमारे पास कभी घर नहीं होगा। तो जो है शिव जी और पार्वती जी आदर्श गृहस्थ हैं, वो भगवान की भक्ति में इतने लीन हैं कि उन्होंने अपने घर बनाने के या भौतिक ऐश्वर्य के तो मालिक हैं, लेकिन उनको इसमें कोई रुचि नहीं है। इसीलिए भगवान कृष्ण के भक्तों को भी ना वो कभी कुछ प्रकार की संपत्ति नहीं देते, क्योंकि जानते हैं कि कृष्ण के साथ भक्तों को कैसे डीलिंग करना चाहिए। जैसे कि श्रील प्रभुपाद जी के एक शिष्य थे, तो आई थिंक उस तमाल कृष्ण महाराज नहीं, मुझे याद नहीं, वो अभी तो सन्यासी हैं। तो वो प्रभुपाद जी के पास आए, तो उन दिनों वो कुछ संघर्ष, वो ब्रह्मचारी थे, तो सोच रहे थे कि मैं गृहस्थ आश्रम में जाऊं या ब्रह्मचारी रहूं, कुछ कुछ ऐसा सोच रहे थे। तो उन्होंने प्रभुपाद जी के शिष्य श्याम सुंदर प्रभु से पूछा, अपना रिवील किया कि देखो ऐसे ऐसे मेरे को कुछ संघर्ष हो रहा है, कुछ मेरे मन में आ रहा है। तो श्याम सुंदर प्रभु ने पूरा काउंसलिंग किया उनको बढ़िया से कि देखो आपका जो स्वभाव है, नेचर है ना, वो गृहस्थ आश्रम के लिए बिल्कुल अनुकूल है। तो वो कन्विंस हो गए, फिर प्रभुपाद जी के पास आए कि प्रभुपाद जी आशीर्वाद दीजिए कि मैं गृहस्थ आश्रम में जाके आपके आंदोलन का प्रचार करूंगा। प्रभुपाद जी को बहुत गुस्सा आया। प्रभुपाद जी बोले किसने तुमको सलाह दी कि तुम जो है गृहस्थ आश्रम में जाओ। तो उन्होंने सब कुछ ऐसे बता दिया कि श्याम सुंदर के पास गया था मैं तो, और श्याम सुंदर प्रभु ने मुझे ऐसे ऐसे बोला, और प्रभुपाद जी ने सुनी पूरी बात को। और फिर प्रभुपाद जी ने श्याम सुंदर प्रभु को बुलाया और खींच के डांटा, बोला हु आर यू टू टेल माय ब्रह्मचारी दैट दे शुड गेट मैरिड। बोला कि तुम कौन होते हो मेरे ब्रह्मचारी को ये बोलने के लिए कि वो विवाह करें। और उनको बोला आप ब्रह्मचारी रहो, इस प्रकार से शिष्य को बोला तुम्हें कोई दिक्कत नहीं विवाह करने की। तो जो शिवजी और पार्वती हैं उनके पास सब, उनका सब कुछ हो सकता है, लेकिन फिर भी शिवजी और पार्वती कभी अपने लिए घर नहीं बनाते। तो ये एक और जो है, ही इज द ग्रेटेस्ट डिवोटी, शिवजी महान भक्त हैं, योगेश्वर भी हैं, लेकिन स्टिल उनके पास घर नहीं है। और जो पार्वती देवी है वो भी एक पतिव्रता और विनम्र स्त्री है। तो शिवजी के नम्रता का एक और दूसरा जो है लक्षण है। कोई ये प्रश्न पूछ सकता है इस लीला में कि शिवजी के पास सब कुछ है तो दक्षिणा देने के लिए क्या उनके पास, अब वो बोल रहे कुछ और नहीं है, ऐसा क्यों? कोई प्रश्न पूछ सकता है, दक्षिणा भी कुछ और दे सकते थे वो, लेकिन नहीं। भक्ति भागवत मान बता रहे थे कि दैट मेक्स इन द बेस्ट वैष्णव। क्यों? क्योंकि जब ब्राह्मण आए थे तो शिवजी घमंडी नहीं थे कि देखो मैं तो तुम्हें कुछ भी दे सकता हूं, आई कैन गिव यू एनीथिंग एंड एवरीथिंग। वो तो बोल रहे थे नो आई नीड योर ब्लेसिंग्स, कि मुझे जो है ब्राह्मणों की वैष्णवों का आशीर्वाद चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं इतना महान हूं तो मैं तुमको कुछ दे सकता हूं, लेकिन नम्र थे, देखो मेरे पास यही है ये ले जाओ, लेकिन मुझे आपका क्या चाहिए, आशीर्वाद चाहिए। उनको बहुत सारे ब्राह्मणों को, कितने सारे पाचमणि को वरदान दे सकते थे, लेकिन शिव जी ने दिया नहीं, है कि नहीं? तो एक शुद्ध भक्त होता है वो, उसका समस्त ऐश्वर्य होते हैं और प्रदर्शित भी कर सकता है, लेकिन वो प्रदर्शित करते नहीं है, किसी को देते नहीं है, क्योंकि उनके लिए तो नगण्य है। जब वो भगवान कृष्ण से दिव्य रत्नों को अपने हृदय में धारण करते हैं तो फिर उन्हें अन्य सब चीज तो बिल्कुल तुच्छ प्रतीत होती है। काचातम विस्मृतम रत्नम हरेर नामैव केवलम, कि बाकी दुनिया के सारे सुख हैं ये तो कांच के टूटे हुए टुकड़े के समान है। कांच का टूटा हुआ टुकड़ा जो है वो तो किसी काम का नहीं होता, यूजलेस होता है, यहाँ इतने शीशे लगे हैं, शीशा टूट जाएगा तो इसको ना आप रिसाइकल कर सकते हो, ना कुछ भी नहीं कर सकते, कांच का टुकड़ा केवल बर्बाद है। इनफैक्ट मेरा अनुभव था जब मैं टेम्पल कॉलेज सेवा करता था, तो बहुत सारे एक बार शीशे इकट्ठे हुए थे, मैंने कबाड़ी को बुलाया तो काबाड़ी बोलता है कि शीशा नहीं लेते हैं। तो बोला तुम किसी भाव ले जाओ। बोला किसी भाव नहीं, फ्री में देंगे, पैसा देंगे तभी लेके नहीं जाएंगे हम। तो मैंने बोला ऐसा क्यों? बोला इससे कुछ भी फायदा नहीं होगा, संभालने में इतनी मुश्किल है। तो मैंने बोला कुछ तो बना लेना, कहीं लगा लेना। तो बोला नहीं, बोले इसको नहीं लेके जाएंगे, आप चाहे हमेशा और आप पैसा दोगे तभी नहीं लेके जाएंगे। और उसके बाद टूटा हुआ कांच है तो बड़ा और क्या करता है, वो केवल आपका नुकसान करता है, हाथ काटता है। इसी बार भौतिक सुख जितने भी हैं वो किसी ना तो उनका कोई फायदा है, उल्टा नुकसान करने वाले हैं। तो इसलिए शिव जी जो है ना उनके प्रति जरा भी उनका आसक्ति है, ना वो कृष्ण के भक्तों को देते हैं। इसके बाद एक अन्य पॉइंट जो शिव जी के महान गुण, क्यों वो वैष्णव है, टॉप मोस्ट वैष्णव है ना। शिव जी एक स्वीपर के रूप में कार्य करते हैं, जिस प्रकार भक्ति विनोद ठाकुर ने भी यही पोजीशन नामहट में लिया, एक झाड़ूदार की। नामहट के अंदर ठाकुर भक्ति विनोद ने जो अपना पोजीशन लिया वो लिया कि मैं एक झाड़ूदार, जो झाड़ू देने वाला भंगी होता जमादार, वो बन जाता हूं। उसी प्रकार की पोजीशन भगवान शंकर भी लेते हैं। क्यों? एक जमादार होता है, झाड़ूदार होता है, उसको कोई ऊंची दृष्टि से नहीं देखता, कोई सम्मानीय दृष्टि से नहीं देखता, है कि नहीं? झाड़ूदार को बोलते हैं अरे भंगी थोड़ा दूर है ना, स्पर्श मत करना, स्पर्श कर नहाना पड़ेगा। तो उसे अमा शिव जी भी इसी प्रकार से जो है, he doesn't want to be looked upon, but he want to be looked down upon. He don't want to be respected. He want to be looked down upon. कि शिव जी जो है उनको आदर नहीं चाहिए, बल्कि वो तो प्रसन्न होते हैं जब लोग जो है, वो चाहते हैं कि लोग उनको नम्र माने। बेसिकली नम्र माने मतलब अर्थात उनकी पोजीशन बहुत ही नम्र हो, अमानिना मान देना कीर्तन ये जो है। तो जो लोग एक झाड़ूदार को या जमादार को नीचे की दृष्टि से देखते हैं, वे भूल जाते हैं कि इसी जमादार की वजह से हम लोग जो है स्वच्छ वातावरण उपभोग कर पा रहे हैं। रात को सब लोग, हम पूरा दिन सड़क गंदा होता है, सुबह सुबह आकर के सब स्वीपर लोग सड़क साफ करते हैं तभी सड़क साफ मिलता है। पीछे कई साल पहले दिल्ली में जमादारों ने स्ट्राइक कर दिया था, काफी टाइम पहले। तो हम सबको अगर किसी को याद रहेगा तो अलग बात है, याद नहीं है तो एमसीडी जितने सैलरी हाइक के लिए तो बहुत समस्या हो गया था, कूड़े को कहाँ डिस्पोज करें, है कि नहीं? तो ऐसा जो स्थिति आता है व्यक्ति रियलाइज कर सकता है कि जमादार दुनिया के अंदर कितने इंपॉर्टेंट है। लेकिन नॉर्मली ऐसे जमादारों को या झाड़ूदार को लोग बहुत निचली दृष्टि देखते हैं। तो ऐसे क्यों शिव जी इस प्रकार की पोजिशन लेते हैं, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि शिव जी जो शुद्ध भक्ति का जो मार्ग है ना, उसको साफ रखते हैं। और यही हम भक्तों को प्रार्थना करें कैसे, क्योंकि शुद्ध भक्ति क्या है? अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम आनुकूल्यन कृष्णानुशीलन भक्तिरुत्तम। उसके ऊपर ये बहुत सारे कचड़े होते हैं। यही ठाकुर भक्ति विनोद की गोद्रुम कल्पतरु के अंदर भी पुस्तक लिख रहे हैं, उसके अंदर भी यही बता रहे हैं कि ज्ञान कर्म आदि ये तीन क्या है, शुद्ध भक्ति के मार्ग के अंदर कचड़ा है। कचड़ा कैसे? ज्ञान अर्थात मेंटल या फिलोसॉफिकल स्पेकुलेशन लीडिंग टू मोनिस्टिक फिलोसॉफी, कर्म फ्रूटी व्यक्ति सकाम कर्म आदि अर्थात यौगिक सिद्धि भौतिक सुख इत्यादि इत्यादि जो है मिस्टिक सिद्धि इत्यादि। तो ये शुद्ध भक्ति के मार्ग में भी एक बहुत बड़ी बाधा है। जैसे हम भक्तों के हृदय में भी कई बार एक इच्छा रहती है, अभी हमारे कई भक्तों ने कांग्रेशन ब्रह्मचर्य में भक्ति शास्त्री किया, तो टेंडेंसी टू बी अ शास्त्री, शास्त्र को जानना, शास्त्र को कोट करना, बहुत ज्यादा विवाद करना उनके ऊपर, यहाँ ये सही है वो गलत है, क्या सही है क्या गलत है इत्यादि, इसके ऊपर बहुत ज्यादा विचार करना। ऐसे ज्ञान की टेंडेंसी भी रहती है, कर्म की टेंडेंसी कैसे रहती है, आई विल डू दिस सर्विस इफ आई गेट समथिंग इन रिटर्न, यदि मुझे बदले में ये मिलेगा तब मैं सेवा करूंगा, नहीं तो अहेतु की सेवा नहीं करने वाला इस प्रकार से। और आदि मतलब योग सिद्धि, बहुत सारे स्किल को अनुभव करना कि ये डिवोटी बहुत स्किलफुल डिवोटी है। ऑफकोर्स किसी में नेचुरल स्किल हो, प्रभुपाद जी कहते हैं उसको भंग से में लगाना चाहिए, लेकिन आर्टिफिशियली या तो बहुत ज्यादा आसक्त होना, केवल अलग अलग प्रकार के हुनर को सीख लेना, या फिर आर्टिफिशियली व्यक्त हो जाना कि नहीं नहीं मेरे पास स्किल है लेकिन फिर भंग से में नहीं लगाऊंगा, दोनों प्रकार से जो है ये इस टेंडेंसी के अंदर आता है। और ये आई एम बेटर डिवोटी देन अदर डिवोटी, इस प्रकार से बहुत सारे शुद्ध भक्ति के मार्ग में कचड़े होते हैं, यू नो। और एक साधक भक्त अपने प्रयास से कचड़े को निकाल नहीं सकता, केवल वो प्रयास कर सकता है, केवल भगवान और उनके शुद्ध भक्तों के अहितु की कृपा से इस कचड़े को हम हटा सकते हैं। हो सकता है शुद्ध भक्ति के मार्ग पर चलते हुए वो धूल कभी हमारे सामने हो, और हो सकता है कभी कभी हम पूरे धूल से लिप्त हो, तीनों गुणों से इस बार कचड़े से ही लिप्त हो। अर्थात जब भक्ति कर रहे हो, साधना भक्ति, तो हो सकता है कि पूरा मोटिवेशन ही एक तो है बीच बीच में कभी मोटिवेशन आता है, एक है पूरा मोटिवेटेड इस ज्ञान कर्म आदि के लिए, वही मोटिवेट करता हूं भक्ति के लिए, या तो भक्ति के बीच को पानी दे रहे हैं, या फिर हो सकता है हम वीड को ही, खरपतवारों को ही पानी दे रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन जो भगवान शिव हैं, उस सारे जो डर्ट को, सारे कचड़े को जो है वो साफ करते हैं, है ना। और कचड़े को साफ करने का ऑफकोर्स सारे भक्त करते हैं, लेकिन शिव जी महान वैष्णव हैं, उनकी कृपा से कचड़े को दूर किया जा सकता है। और शिव जी कैसे करते हैं उस कचड़े को दूर, शुद्ध भक्ति के मार्ग से रखते हैं, क्योंकि जो जमादार होता है, आप देखिएगा अपना गाड़ी या रिक्शा भर के लेके जाता है, कहीं जाकर डिस्पोज करता है, जहां बड़ा गार्बेज का होगा वहां वो जाके उसको फेंक देता है, सब ऐसे ही होता है, सारा कूड़ा जो डिस्पोज होता है उसको कहीं ना कहीं इकट्ठा करेगा और डिस्पोज करना पड़ेगा। हम गुंडीचा मार्ग में देखते हैं सब बक्षी चैतन्य महाप्रभु ने सफाई किया तो अपने वस्त्र के अंदर सारे कंकड़ और तिनके भर के बाहर लेके गए, तो कहीं ना कहीं जमादार को ऐसे उठा कर कूड़ा कहीं फेंकना पड़ता है। तो शिव जी क्या करते हैं, शिव जी शुद्ध भक्ति के मार्ग से जितने इम्पर्सनलिस्ट हैं, मायावादी हैं, भूत पिशाच हैं, भौतिकतावादी लोग हैं, उन सबको इकट्ठा कर लेते हैं, वो सब देखेगा शिव जी से आकर्षित होते हैं, ताकि शुद्ध भक्त प्रोटेक्ट रह सके, है कि नहीं। और वो सारे इकट्ठा होकर कहां जाते हैं, शिव जी उन्हें अपने पास रख लेते हैं, बोले ठीक है तुम लोग मेरे पास रहो, लेकिन भक्तों को डिस्टर्ब मत करना, जरा दैट इज लॉर्ड शिवा, ही प्रोटेक्ट्स द डिवोटीज एंड दैट इज सर्वेंट ऑफ सर्वेंट, इज सर्वेंट ऑफ ऑल द सर्वेंट, कैसे भक्तों की सेवा करो जो है, ये शिव जी की चेतना है कि किस प्रकार शुद्ध भक्ति के मार्ग को बिल्कुल साफ रखा जाए, सारे भक्तों को प्रोटेक्ट किया जाए। इसके ऋषि कुमार को भी बता रहे थे, वो तो साउथ इंडिया से, शंकराचार्य की फिलोसॉफी को अच्छे से जानते हैं, तो वो बता रहे थे कि शिव जी शंकराचार्य के रूप में भी आते हैं, क्यों, सबको इम्पर्सनल बनाने के लिए नहीं, ऑफकोर्स जो बुद्धिस्ट जो शून्यवादी लोग थे उनको वैदिक शास्त्र विचार वो देने के लिए, विश्वास श्रद्धा प्रकट करने के लिए, लेकिन फिर भी लोगों के अंदर इम्पर्सनल टेंडेंसी होगी, होती है, तो बोले मेरे साथ रहो, लेकिन शुद्ध वैष्णवों को भी जाके मत मिलना, नहीं तो वैष्णवों और मायावादियों को समझना ही मुश्किल हो जाएगा, और वैष्णव शुद्ध भक्ति का जो मार्ग है ना, इसको साफ रखा जाए। ये शिव जी इस प्रकार से जो है वैष्णवानां यथाशंभु, वैष्णवों को और शुद्ध भक्ति के मार्ग को कंटेमिनेट होने से बचाए रखते हैं। सारे ऐसे तमो, अब देखिए भौतिक वाले लोग होते हैं किसके पास जाते हैं, शिव जी के पास जाएंगे, लोग सोमवार रखेंगे, सोमवार व्रत रखते हैं, आई थिंक 16 सोमवार, सावन सोमवार, इतने सारे लोग हम देखते हैं कांवड़ लेके जाते हैं, शिव जी की उपासना करते हैं। मायावादी लोग होंगे तो शंकराचार्य के भाष्य को सुनेंगे, है कि नहीं, जिनके भौतिक सुख की इच्छा होती है वो शिव जी की उपासना करते हैं। इस प्रकार से हर प्रकार के लोग शिव जी या उनकी पत्नी भवानी के पास जाते हैं, ताकि और इस प्रकार से शुद्ध भक्तों को डिस्टर्ब नहीं करते, क्यों, क्योंकि अगर वो लोग भक्तों के समाज में आएंगे तो ऐसा शुद्ध भक्ति का मार्ग मिश्रित होने लग जाए इन सब चीजों से, इसलिए दे ऑल गो टू लॉर्ड शिवा, लॉर्ड शिवा कीप्स देम विद हिम लाइक दैट, और उनकी संगत में भी भगवान शिव प्योर रहते हैं। तो मैंने 5 मिनट ऊपर ले लिया, लेकिन बता दो शिव जी के पास हम जाए तो हम क्या प्रार्थना कर सकते हैं। तो मैं 4 साल वाराणसी में जब मैं पढ़ाई कर रहा था, तो वाराणसी तो शिव जी का क्षेत्र है, विश्वनाथ, काशी विश्वनाथ, वहां शिव जी को विश्वनाथ के रूप में पूजा किया जाता है, और जगह जगह शंकर भगवान के मंदिर हैं, और गंगा जी वहीं पर ही साथ में बहती है दशाश्वमेध घाट के पास में, और भारी मात्रा में लोग शिव जी की उपासना करने आते हैं शिवरात्रि और सोमवार वगैरह में, बहुत भीड़ होता है पूरा। हमारे बीएच में बहुत बड़ा शिव जी का मंदिर था विश्वनाथ का, वहां से जो मेन थे उनको बोलते हैं काशी विश्वनाथ, तो हम जाते थे वहां पर उनके दर्शन लेने के लिए। श्री चैतन्य महाप्रभु भी गए थे वहां पे, पूरा वाराणसी महासंकीर्तन निकाला था, शिव जी को देख के बहुत प्रसन्न होते थे और खूब संकीर्तन करते थे, है ना। तो शिव जी से क्या प्रार्थना करना चाहिए हमको, शिव जी से प्रार्थना करना चाहिए भक्तों को, क्योंकि शिव जी अंतरंग पार्षद है। आपने पिछले कई दिनों में भी बहुत सारी लीलाएं सुनी होगी शिव जी की, ये मोहिनी मूर्ति की लीला भी भगवान और शिव जी के बीच का जो इतना गाढ़ स्नेह का संबंध है वो प्रदर्शित करता है, कि ना शिव जी को बुरा लगा कि क्या भगवान ने मेरा उमा देवी के सामने मेरे पार्षद में मेरा इतना अपमान करवा दिया। शिव जी वाले एक्सटैटिक, सो एक्सटैटिक, ये है मेरे भगवान, देखो जिनकी माया मुझे भी मोहित कर सकती है, जो माया देवी मुझे, मेरी पत्नी मुझे मोहित नहीं कर सकती, वो भगवान की माया इतनी स्ट्रांग है कि मुझे मोहित कर सकते हैं। ही वाज सो एक्सटैटिक लॉर्ड शिवा, देखिएगा इतने खुश होते हैं वो शिव जी कि जय, मैं भगवान के द्वारा ठगा गया, है कि नहीं। उसी प्रकार से जब एक और लीला में शिव जी और रुद्र जो आई थिंक बाणासुर या उनका युद्ध होता, तब भी शिव जी बहुत एक्सटैटिक होते हैं, है ना, कि भगवान से पराजित होने पे, अपमानित होने पे, हार जाने पे शिव जी बहुत खुश होते हैं कि देखिए मेरे भगवान कितने महान है, दुनिया मेरी पूजा करती है, मैं महान हूं, ठीक बात है, लेकिन मेरे से भी महान कौन है, वो मेरे भगवान है, है कि नहीं? और भगवान क्या करते हैं जब राम के रूप में आते हैं तो रामेश्वर शिव जी की पूजा करते हैं, और भी अन्य जगह श्री चैतन्य महाप्रभु आते हैं भुवनेश्वर में जाके शिव जी के सामने लिंगराज महादेव के सामने उदंड नृत्य करते हैं, और चैतन्य चंद्र जगह जगह जहां जहां शिव जी के मंदिर है श्री चैतन्य महाप्रभु वहां जाते हैं, बहुत प्रसन्न होते हैं और सब। प्रभुपाद चैतन्य शिव जी आशुतोष क्यों है? लोग उनको बेलपत्र चढ़ाते हैं उसी से प्रसन्न हो जाते हैं, थोड़ा दूध चढ़ा देंगे, थोड़ा जल चढ़ा देंगे, थोड़ा वो क्या होता है कांटे वाला एक फ्रूट धतूरा, सब चीप चीप सस्ती सस्ती वस्तुएं वो देंगे, शिवजी उससे प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन हम भक्तों को ऐसे शिवजी को धतूरा बेलपत्र दूध से प्रसन्न ना करके किससे प्रसन्न करना चाहिए? भगवान के चरण कमलों के शरण ग्रहण करके और शिवजी से वरदान मांगना चाहिए कि हे शिवजी आप कृपा कीजिए, अज्ञानता के तमोगुण के अधिष्ठाता देव हैं आप, कृपा करके मेरा तमोगुण हटाइए। आप जो है हमारे तमोगुण की और ये शुद्ध भक्ति के मार्ग में इतने सारे कचड़े हैं मेरी चेतना के अंदर हैं, इन सबको कृपा करके आप हटाइए। ये शिवजी से भक्तों की प्रार्थना होनी चाहिए। शिवजी एक आचार्य हैं, रुद्र संप्रदाय प्रभुपाद जी बताते हैं उनके जो आया है, उन महान वैष्णव की कृपा से हमारा शुद्ध भक्ति का मार्ग भी जो है साफ हो जाएगा। नहीं तो इस प्रकार से हम सब भक्तों को शिवजी से प्रार्थना कर सकते हैं। इस प्रसंग में कभी भी शिवजी को मिसअंडरस्टैंड नहीं करना चाहिए, इसमें शिवजी और भगवान का महान संबंध जो प्रगाढ़ स्नेह का संबंध है उसको समझना चाहिए और शिवजी की भी महानता को देखा जाना चाहिए। शिवजी की नम्रता, शिवजी की भगवान के प्रति भक्ति और अटूट श्रद्धा, अटूट प्रेम, राधा श्रद्धा तो छोटा वर्ड है, अटूट प्रेम, वेयर ही ओनली वॉन्ट्स कृष्णा एंड कृष्णा टू बी ग्लोरिफाइड, ही डजंट वॉन्ट हिज ओन ग्लोरी, एंड देयरफॉर लॉर्ड शिवा इज द पर्सनिफिकेशन ऑफ दिस वर्स, त्रिनादपि सुनीचे न तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तने सदाहरि। कि शिवजी खुद मान की इच्छा नहीं रखते, दूसरों को मान देते हैं, नम्र हैं, तभी अन्य गुरुओं के पास भेजते हैं, अपने बहुत ही नम्र स्टेटस रखते हैं और सहनशील कैसे कि वो विषपान करते हैं, सारे भूत में रखते हैं, लेकिन उन सबको उनसे अप्रभावित रहते हैं, अपाप विद्धम, और हमेशा उनकी चेतना भगवान कृष्ण के चरण कमल में ही लगी रहती है। तो मैंने समय ज्यादा नहीं दिया, किसी का प्रश्न हो तो आप मेरे से पर्सनली पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की, ग्रंथराष्ट्र भागवतम की, श्रील वासुदेव घोष की, जय शंकर भगवान की, पिता गौर प्रेमानंदे, हरे कृष्ण।